ओम शांति। आज हम योगयुक्त जीवन और भोगी जीवन के बारे में बात करेंगे। बाबा कई बार मुरलियों में शब्द यूज करते हैं भोगी जीवन। भोगी माना जिसमें हम एक्सपीरियंस में इतना खो जाते हैं कि हम योगयुक्त रहना भूल जाते हैं, और भोगी माना ये भी कि हम उसमें वेदना या कष्ट भोग के कुछ सीखते हैं, उसमें खुशी की या जो अतींद्रिय सुख की भासना हमें नहीं होती। और तीसरा मायना ये होता है भोगी का कि हम भोग करना चाहते हैं, जैसे कोई रास विलास में खोया या बहुत ज्यादा मेटीरियलिज्म में खो गए, तो ऐसा हम भोग करते हैं किसी चीज का, उसे यूज करते हैं। तो इस मायने में भी भोगी ये शब्द यूज होता है। तो ये जो गीता के ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी को बाबा ने मुरलियों में कई बार इन शब्दों को बताया है या इनको इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग दी है। तो आज हम बात करेंगे योगयुक्त जीवन की और भोगी जीवन की। तो भोग युक्त जो जीवन है, भोग युक्त जीवन में क्या होता है, इसमें चार चीजें होती है। इसमें सबसे पहले आपको कोई भी एक्सपीरियंस के दौरान आपको अवेयरनेस नहीं होती है या आपके अंदर में समझ नहीं होती है कि हम ये एक्सपीरियंस, ये चीज एक्सपीरियंस क्यों कर रहे। सुख और दुख दोनों भी किस्म के जो हमारी भोगनाएं हैं उसके बारे में हमें समझ नहीं होती है। हमें एक पता रहता है, आईना रहता है कि ये एक काल चक्र है जिसमें सुख दुख दोनों आते हैं, बट क्यों हम ये भोगना फेस कर रहे हैं। बहुत सुख आए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दुख आए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बट एक जो एकरस जो अवस्था होनी चाहिए जीवन में वो नहीं होती है। तो ये जीवन जो है वो फ्लक्चुएशन की जीवन है। भोगी जीवन जो है वो ऊपर ऊंच नीच की जीवन है, और इसमें हमेशा इसीलिए एक डर बना रहता है। डर रहता है कि आज यदि सुख है तो कल वो दुख में बदल न जाए, या दुख है तो पता नहीं है कल सुख आएगा या नहीं। तो एक डर और एक चिंता, ये दोनों चीजें इस जीवन में बनी रहती है। और तीसरी बात ये है कि हमें हमेशा कोई ना कोई साधन चाहिए होते हैं इस जीवन को भोगने के लिए। हम एक्सटर्नली कोई ना कोई चीज ढूंढते रहते हैं, जैसे कोई साधन हो, घर हो, गाड़ी हो, बिजनेस हो, रिश्ते अच्छे हो, सोसाइटी में नाम हो, तो ये बाहर के साधनों से ये भोगी जीवन बनती है। ये आपके आंतरिक खुशी के स्टेज से नहीं बनती है। अगर किसी ने कुछ कहा तो हमारी स्टेज ऊपर, कभी नीचे। सो सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो गया तो स्टेज नीचे, बिजनेस में लॉस हो गया तो स्टेज नीचे, नहीं तो स्टेज ऊपर। तो खुशी ना, जैसे बाबा कहते हैं शादी मुरादी आई तो सडनली बहुत खुश हो जाते। तो भोगी जीवन की सबसे मुख्य बात है कि आप इसमें स्टेबिलिटी और कंटेंटमेंट ये दोनों नहीं रहती है। आप हमेशा चिंतित रहते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं और या फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी माना एकरसता जो है, या एक सदा ही एक ही स्थिति में रहने की जो क्वालिटी है ये भी नहीं होता, और आंतरिक सुख एक कंटेंटमेंट जो होना चाहिए ये भी इस जीवन में होती नहीं। और चौथी बात इस जीवन की, भोगी जीवन की, यह है कि इस जीवन में आपको पता नहीं रहता है कि आप सही कर्म कर रहे या नहीं। आपके सामने कोई आईना नहीं रहता है, आप वही करते हैं जो और लोग भी करते हैं। तो इसमें जिसे हम कहते हैं ना भेड़ बकरियों की मेंटालिटी, जैसे ये यहां मुड़ गया तो मैं भी वहां मुड़ू, किसी ने अपने फोन पे कोई ऐप डाउनलोड कर ले तो मैं भी वही करूं, तो ये जो बुद्धि है ये यूज नहीं होती अधिकतर इस जीवन में। हम हमेशा सही कर्म कर रहे हैं ये आईना नहीं होता है, समझ नहीं होती है, और जो सब कर रहे हैं हम वही सोचते हैं कि वही करने से हमारा भी जीवन सही रहेगा। तो ये जो भोगी जीवन है, इस तरह से जीवन जीने के वजह से आपके जीवन में तकलीफें बहुत आती हैं, बीमारियां आती है, क्योंकि आप इंपल्सिव होकर कोई चीज करते हैं। जैसे अचानक मन में कुछ सोच लिया और इतना पैसा खर्च कर दिया, या किसी को कुछ दान दे दिया, या बिजनेस में कोई बड़ा रिस्क उठा लिया, उसमें सोच समझ बुद्धि यूज करना, ये सब बातें बहुत करके यूज होती भी है, तो भी उसका जो अंजाम आएगा वो सही आएगा या नहीं, इस बात का हमेशा एक चिंता रहता है। तो भोगी जीवन जीने का ये जो तरीका है, इससे ये ऐसी जीवन जीते जीते हम एक कगार पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई दुविधा बनी रहती है या दुख के कई कारण बने रहते हैं, और किसी ने हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं किया या हम जो सोचते या समझते हैं उस अनुसार नहीं किया, तो हमें हमेशा दुख होता है। तो भोगी जीवन की ये चार लक्षण होते हैं। एक तो इसमें चिंता का बहुत प्राधान्य है, इसमें अनसर्टेनिटी है। सेकंड, इसमें ये इस तरीके से जीवन जीने से आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होती है, एकरसता नहीं होती है। तीसरा, कि आपको ये पता नहीं है कि आप सही कर्म कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप दूसरों से या तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या इम्प्रेस हो जाते हैं या कोई भी ऐसी बात। और चौथा है कि इसमें आपको आंतरिक कोई सुख हमेशा नहीं रहता है, कंटेंटमेंट नहीं रहती है, कभी आपकी स्थिति ऊपर कभी नीचे। तो भोगी जीवन जीने की इस प्रक्रिया की वजह से आपके जीवन में कोई ना कोई तनाव टेंशन बना रहता है। अब हम बात करते हैं योग युक्त जीवन की। तो योग युक्त जीवन क्या है? योग युक्त जीवन वो है जहां पे आप अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, आपका अपने अंदर आपके अंदर एक समझ होती है कि मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे संस्कार कैसे चलते हैं और मुझे ये डिसीशन कैसे लेना चाहिए, ये कार्य कैसे करना चाहिए, जिसे ही बाबा हमेशा कहते त्रिकालदर्शी की स्थिति। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप पास्ट के एक्सपीरियंस, फ्यूचर को देखते हुए और प्रेजेंट में रहते हुए, इन तीनों को यूज करके आप अपने निर्णय ले सकते हैं या आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो योग युक्त होने का पहला जो फायदा है, जिसे हम कहते हैं कि कनेक्टेड होना, अपने आप से एक संबंध स्थापित करके अपने को जान के फिर उसके अनुसार हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया चलाना, तो ये योग युक्त होने की प्रक्रिया है। एक और मतलब ये भी है कि आप परमात्मा से, जिनकी बुद्धि विशाल है, जो ज्ञान का सागर है, उनके साथ जुड़कर आप अपने जीवन के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले, या उनसे ये समझ ले, या उनके साथ उनसे शक्ति ले कि कैसे हमारे जीवन को चलाए। तो इसे भी हम कहते हैं योग युक्त जीवन। तो योग युक्त जीवन में सबसे पहली बात ये आती है कि आप त्रिकालदर्शी स्थिति में होते हैं। भले शुरुआत में आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई ना कोई बात ऊपर नीचे भी हो, पर एक दो बार अनुभव होने के बाद आप यदि योग्युक्त स्थिति में ही रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है कि मुझे तीनों कालों को देखकर फिर निर्णय लेना है, दूसरों के इम्प्रेशन या इन्फ्लुएंस से निर्णय नहीं लेना है। तो मुझे ये जीवन कैसे चलानी है, मुझे इस जीवन को कैसे समझना है, ये प्रक्रिया तब होती है जब आप योग युक्त हो। तो आप अपने आप से कनेक्टेड हो या योग में हो, या परमात्मा से योग में हो, तो दोनों ही किस्म के योग में आपको जीवन की एक गहरी या लंबी समझ मिलती है, जिससे आप आसानी से कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं या सोच सकते हैं कि ये करें या नहीं करें। फिर योगयुक्त जीवन का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि धीरे धीरे आपको जो सुख के जो साधन जिन पे आप निर्भर थे, उन साधनों के सिवाय भी, उन साधनों के बिना भी आप कैसे जीवन जी सकते हैं अच्छे से, इसकी आपको एक अंदर ही अंदर प्रैक्टिस हो चलती है। धीरे धीरे आपका जो मोह है साधनों से या चीजों से या रिश्तों से, प्यार नहीं, मोह माना इनके बिना चलता नहीं है या इसके बगैर मेरा चलेगा नहीं, ये जो इसे एक ऑब्सेसिव एक लाइकिंग आपकी होती है, वो मोह धीरे धीरे छूटते जाता है। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा से जब शक्ति मिलती है तब आप इस मोह को छोड़कर आप कोशिश करते हैं कि चलो आज कोई बात नहीं, आज पैसे कम है तो ऐसे हम जीवन जी लेंगे, या आज बहुत लोग नहीं हमें समझते हैं या जानते हैं तो ऐसे जीवन जी लेंगे। तो अपने आप को योग से अपने आप को ढालने की एक समझ आ जाती है, और साथ ही साथ परमात्मा से जो शक्ति मिलती है उससे बहुत जो बड़ी चीज बन सकती है, जो जैसे समाज में किसी ने आपका बड़ा इंसल्ट कर दिया या ऐसी कोई भी बात हो, तो उसको आप ज्ञान के रीति से समझकर उसको आप उससे आप हल्का हो जाते हो, आप उसको छोड़ देते हो उस बात को मन से, इसीलिए धीरे धीरे आप एकरसता की स्थिति पर आते हो। तो अंदर आपके जो सुख की या कंटेंटमेंट की जो कोशेंट है वो बढ़ते जाती है। तो पहली बात, आप त्रिकालदर्शी होकर सारे डिसीशंस लेते हैं इसलिए चिंता धीरे धीरे कम होती है। दूसरी बात, आप साधनों और बाकी अन्य जो बाहरी चीज है उनसे आपका जो एक ऑब्सेशन था या एक्सपेक्टेशन था वो कम होते जाता, जैसे आपको परमात्मा से शक्ति मिलती है तो आप कोई चीज या साधन के बगैर भी धीरे धीरे जीवन जीना सीख लेते हैं, और आपका किसी के ऊपर लगाव न होने के कारण, मोह न होने के कारण, आपकी जरूरतें सीमित होने के कारण, आपके अंदर ही अंदर आपको खुशी की फीलिंग होने के कारण आप धीरे धीरे एक स्टेबल या एकरस अवस्था पे आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि योगयुक्त जीवन में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पास कोई किसी चीज की अभाव होगी, चीजें तो शायद और ज्यादा आपके लाइफ में आ जाएगी पर आपका उन पर जैसे आपका आप उन चीजों पर डिपेंड नहीं करेंगे, उनको अपना साधन बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति दिन ब दिन योगयुक्त होने से बढ़ती जाएगी। तो आप अपने जरूरतों को, इन सब चीजों को आप सावधानी से उसका यूज करेंगे। तो ऐसे किस्म के जीवन को हम योगयुक्त जीवन कहते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, आपके अंदर कंटेंटमेंट रहता है इसके अंदर, और फिर धीरे धीरे जो चिंता के जो विषय है वो परमात्मा को सुपुर्द करने से, उनके ट्रस्ट में देने से, या उनके साथ उनके समझ से अपने आप को चलाने से, जो बहुत बड़ी चिंता की विषय बन सकती है या जो बहुत गहरे कोई लॉस की चीज हो, इन सब बातों को भी आप आसानी से पार कर लेते हो। तो जो भोगी लोगों के लिए या भोग युक्त जीवन में जो है उनके लिए जो चीजें बहुत मुश्किल है, वही चीजें या वही बातें आपके लिए योग युक्त होकर बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है भोगी जीवन से योगयुक्त जीवन, ये हमें जो बदलाव लाना है इसके लिए हमें कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। और वो मुख्य बातें क्या है? तो सबसे पहले मुख्य बात ये है कि हम अपना एक ज्ञान योग का संस्कार बनाएं। रोज यदि हम ये समझें कि मेरे मन में, बुद्धि में और संस्कारों में क्या चल रहा है, ये ड्रामा में क्या चल रहा है, मेरा रिएक्शन कैसा है और परमात्मा की श्रीमत क्या कहती है, तो मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ, तो ये जो समझ और ज्ञान योग का ये संस्कार जो हम क्रिएट करते हैं नया, इससे हम धीरे धीरे उस भोगी जीवन से योगयुक्त जीवन में आते हैं। तो पहले जैसे बाबा के श्रीमत अनुसार सबेरे अमृत वेले मुरली और भोग, ये तीन जो चीज है इसे हर जिज्ञासु हर ब्राह्मण को पक्का इतना गहरा कर देना चाहिए। चाहे कोई भी विपरीतता की भी परिस्थिति हो तो भी आप साधारण भोग से शुरू कीजिए, क्योंकि जब भी आप परमात्मा को भोग ऑफर करते हैं, कुछ भी हो फल भी ऑफर करें, तो आप उनसे कर्म जोड़ते हैं और आप उनको सरेंडर करते हैं कि मेरे जीवन की चीजों को आप सहज कीजिए। तो आप अपने घर के सारे जो भी आप चीजें लाते हैं घर में, उन सबको आप डायरेक्टली परमात्मा को ऑफर करें कि आप जैसे चाहे वैसे इन चीजों को चलाएं। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते उस भोगी जीवन से हम योगयुक्त जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। और फिर सवेरे जब भी हम परमात्मा से अमृत वेले हम बातें करते हैं या अपना रिश्ता स्थापित करते हैं, तो वो भी एक परमात्मा से हम कर्म जोड़ते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो जिसमें कोई दुविधा न आए वैसे जीवन चलाने की विधि, वो परमात्मा धीरे धीरे हमारे बुद्धि में टच करते रहते हैं। क्योंकि परमात्मा का कार्य क्या है, उनका कार्य है पवित्र प्रवृत्ति स्थापन करना। परमात्मा सन्यासी धर्म नहीं स्थापन कर रहे हैं, वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि आप इसी प्रवृत्ति में इसी गृहस्थ आश्रम में रहो और आप सुखद वे में रहो, अटैचमेंट और मोह माया के साथ नहीं रहो, सब चीजों को यूज करते हुए उन्हें बैलेंस में यूज करो। तो जब हम परमात्मा को अपने जीवन की चीजें सुपुर्द करते हैं, हम उनसे अमृत वेले योग स्थापन करते हैं, फिर हम उन्हें भोग लगाते हैं और हम उनकी वाणियां सुनते हैं, तो इन सभी प्रक्रिया से हम धीरे धीरे अपने जीवन को भोगयुक्त से योगयुक्त बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया अपनाने से धीरे धीरे हमारी जो भोगी जीवन है वो योगयुक्त बनते जाएगी और इससे हमें एक बैलेंस में आने का राह मिलेगा। इसमें परमात्मा का कोई हम भगवान के लिए इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ये समझ हम अपने जीवन में लाएं कि अपने शांति के लिए अपने सुख के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम ये जीवन शैली अपना रहे। तो यदि ये आपके मन में हमेशा स्थिर रहेगा तो आप आसानी से भोगी जीवन से योगयुक्त जीवन में आ सकते हैं। और उसका तरीका है कि तीन बातें पक्का निश्चित करें अपने जीवन में, एक है अमृत वेला, दूसरा है मुरली और तीसरा है परमात्मा को रोज भोग लगाना, कोई भी फल का या कोई भी, क्योंकि इससे आप परमात्मा से कर्म जोड़ते हैं और उन्हें अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो जो भी चीजें आपके घर में आए उन सबका ही जैसे हम भोग लगाते हैं, जो भी हम घर में कोई भी चीज लाए हम सब वो पहले परमात्मा को सुपुर्द करते हैं कि आप जैसे चलाओ वैसे चलाए। तो हर एक कर्म के पहले आप परमात्मा को बुला के फिर कर्म करें और उन्हें हर चीज सुपुर्द करें, तो आसानी से वो आपके बुद्धि को ये बताएंगे कि आपको ये चीज कैसी चलानी है और उस रीति से आप धीरे धीरे एक परमानेंट सुख के स्थान पर पहुंचेंगे, एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां आपको हमेशा कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस फील होने के चांसेस है। तो भोगी जीवन से योगयुक्त अपने जीवन को बनाते चलना है और इस पवित्र प्रवृत्ति के टुवर्ड्स चलना है, सन्यासी नहीं बनना है पर प्रवृत्ति को सही तरीके से चलाने की कला सीखनी है। तो आज की ये बात हुई कि भोगी जीवन और योगयुक्त जीवन में फर्क क्या है और उसे हम कैसे पाएं और उस फर्क को मिटाकर कैसे ट्रांसफॉर्म करें। धन्यवाद। ओम शांति।